हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। एक काम कर, तू अपने पिताजी को देख। तेरे पिताजी कहाँ हैं? तेरे पिताजी के लिए मैंने कुछ कपड़े रेडी करवाए थे, जाकर देख उन्हें वो कपड़े मिले हैं या नहीं। और तब तक मुझे तारा बेटी से कुछ जरूरी काम है। ऐसा कहकर करिश्मा जी ने बहाने से अमन को वहां से भेजने की कोशिश की थी, लेकिन अमन वहां से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि तारा के बगैर एक पल भी रह पाना उसके लिए अभी संभव नहीं था, और वो हर पल सिर्फ और सिर्फ तारा को ही देखना चाहता था। लेकिन अब करिश्मा जी ने उसे निर्देश दिए थे और साथ ही साथ आदेश भी दिया था। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो जल्दी ही वहां से निकलकर अपने पिता के कमरे की ओर जाने लगा था। अमन के जाने के बाद सोनम ने राहत की सांस ली थी। करिश्मा जी ने उसे कहा था कि वो परेशान ना हो, तारा बेटी जल्दी ही आ जाएगी। उसने कहा था कि वो बंगले से बाहर जाकर अपने जादू का इस्तेमाल करके बगीचे में पहुंच जाएगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, सोनम ने भी राहत की सांस ली थी, और कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का अंदाजा था कि तारा जरूर वक्त से पहले लौट आएगी। वहीं दूसरी ओर तारा सोनम के वेश में घर से बाहर तो निकल गई थी, लेकिन उसे कहीं भी कोई अकेली जगह नहीं मिल पा रही थी जहां से वो अपने जादू का प्रयोग करके बगीचे में सीधा पहुंच जाए। इसलिए वो कोई ना कोई अकेली खाली जगह देखने लगी थी। जल्दी ही उसे एक जगह दिख भी गई थी। वहां पर कई गाड़ियां खड़ी हुई थीं। उन गाड़ियों के बीच में कोई भी आसपास नहीं था, और तारा आसानी से वहां से गायब होकर बगीचे में जा सकती थी। इसलिए जैसे ही वो गाड़ियों के पास उनके पीछे गई, उसने जल्दी से आंखें बंद करके अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अभी तारा का मंत्र पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया था। अब तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे गायब होने वाला मंत्र बीच में ही रोकना पड़ा था। वो घबरा कर देखने लगी थी कि क्या हुआ है और किसने उसका हाथ पकड़ा था। जैसे ही तारा ने देखा, उसके सामने अक्षत खुराना खड़ा हुआ था। अक्षत को अपने सामने देखकर तारा काफी हद तक हैरान हो गई थी। उसने अक्षत की ओर देखते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? तभी अक्षत अचानक से सोनम की ओर देखकर कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम अभी तक अमन के घर में क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि उसकी वेडिंग प्लानर वाली जॉब से रिजाइन कर दो, क्यों तुम अभी तक रिजाइन नहीं कर पाई और मेरे पास नहीं आ पाई हो? मैं तुम्हारा दिन पर दिन इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे बगैर एक भी दिन रह पाना मेरे लिए नामुमकिन होता जा रहा है। जैसे ही अक्षत खुराना ने ये कहा, तारा को एहसास हो गया था कि इस वक्त वो सोनम के चेहरे के साथ वहां मौजूद है। तारा ने थोड़ा सा खुद को शांत करते हुए कहा, देखिए मिस्टर अक्षत खुराना, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, और रही बात मेरी जॉब की, मेरी मर्जी, मैं जॉब से रिजाइन करूं या ना करूं, इससे आपकी कोई लेना देना नहीं है, समझे आप? और अभी आप मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। जैसे ही तारा आगे बढ़ने लगी, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर सीधा अपनी ओर खींच लिया था, और तारा सीधा अक्षत के सीने से जा लगी थी। अब तारा काफी ज्यादा हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस सिचुएशन से कैसे निकले, क्योंकि अक्षत तो तारा को सोनम समझकर अपने पास खींच रहा था। हालांकि उन दोनों को पहचान पाना नामुमकिन था, क्योंकि तारा और सोनम दोनों में एक जैसी ही खुशबू आया करती थी। तारा में वो खुशबू थोड़ी ज्यादा आया करती थी, इसलिए अक्षत उसकी खुशबू को सूंघता हुआ कहने लगा, पता नहीं कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती हो, यकीन मानो तुम्हारी ये महक सूंघने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन भर मैं तुम्हें इसी तरह से अपने पास बैठा कर रखूं और तुम्हारे इस खूबसूरत सी खुशबू में खोया रहूं। अक्षत की इतनी दीवानगी भरी बात सुनकर तारा काफी हद तक हैरान और परेशान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अक्षत को कैसे हैंडल करे। वो एकदम से उसके सामने से भी गायब नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसका राज खुल सकता था, और अक्षत को ये भी नहीं बता सकती थी कि वो सोनम नहीं बल्कि तारा परी है। अब तारा कश्मकश का शिकार थी। तभी अक्षत अचानक से उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा और कहने लगा, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर उसने जबरदस्ती सोनम को एक गाड़ी में बिठा दिया था। अब तारा पूरी तरह से हैरान थी कि वो करे तो करे क्या। इससे पहले कि तारा कुछ समझ पाती, अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। गाड़ी तुरंत सड़कों पर दौड़ने लगी थी। अब तारा मन में काफी हद तक बेचैन हो उठी थी। वो मन ही मन में सोनम से बात करने का निर्णय ले चुकी थी। एक बार को तारा का मन किया कि वो अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए अक्षत की सारी यादें मिटा दे और खुद बगीचे में पहुंच जाए, लेकिन अक्षत उसे कुछ भी बोलने या करने का मौका नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बीच बीच में कुछ ना कुछ बोल रहा था। वो तारा को सोनम से बात करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था, ना जादू प्रयोग करने का। अब तारा पूरी तरह से फंस चुकी थी, क्योंकि वो इस तरह से अक्षत की आंखों के सामने से गायब नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर वो इस तरह से गायब होती तो उसका भेद खुल सकता था, और तारा को किसी भी कीमत पर अपना भेद किसी के भी सामने नहीं खुलने देना चाहती थी। तभी अक्षत ने अपनी गाड़ी शहर के बड़े होटल के सामने रखी और कहने लगा, बहुत दिन से मैं तुम्हें इस होटल में लाने का सपना देख रहा था कि मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रीट दे सकूं और आधिकारिक तौर पर सबके सामने तुम्हें प्रपोज करके अपनी नाम की अंगूठी पहना सकूं। क्योंकि मैं तुमसे दूर रहकर इतना समझ चुका हूँ कि तुम्हारे बिना जिंदा रहना मेरे लिए नामुमकिन नहीं है, और तुम्हें आज मेरी मोहब्बत कबूल करनी ही होगी। तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए मोहब्बत देखी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आज मुझे किसी भी कीमत पर मना नहीं करोगी। जैसे ही तारा ने अक्षत का ये प्लान सुना, वो पूरी तरह से बेचैन और परेशान हो उठी थी। अब उसके पास अक्षत के सामने जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, और साथ ही साथ इस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढने लगी थी। जैसे ही उसने देखा कि अक्षत ने एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत टेबल तारा यानी सोनम के लिए बुक किया था, और वहां पर पूरा म्यूजिक एकदम आशिकी का माहौल पूरे तमन्ना के साथ तैयार था, और वो अब सबके सामने तारा यानी सोनम को प्रपोज करना चाहता था। इतना ही नहीं, उसने एक बड़ी खूबसूरत डायमंड रिंग सोनम के लिए पहले ही खरीद रखी थी, जो कि वो उसे पहनाना चाहता था। लेकिन तभी अचानक सोनम यानी तारा के दिमाग में एक आइडिया आ चुका था। वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अक्षत से बच पाना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए उसे कुछ ना कुछ तगड़ा करना ही होगा। इसलिए तारा ने अक्षत की ओर देखते हुए कहा, देखिए सर, मुझे अभी बहुत जरूरी वॉशरूम जाना है, प्लीज आप मुझे वॉशरूम जाने दीजिए। जैसे ही अंगूठी पहनने के वक्त तारा ने अक्षत को वॉशरूम जाने की बात कही, तब अक्षत के माथे पर बल पड़ गए थे, लेकिन अगले ही पल वो अंगूठी को वापस रखता हुआ कहने लगा, ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन याद रखना मैं यहीं बाहर खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वो खुद लेडीज वॉशरूम तक तारा को ले आया था, और तारा जैसे ही अंदर गई उसे मौका मिल गया था। जल्दी ही तारा ने अपने कठिन मंत्रों का उच्चारण करते हुए वहां से गायब हो चुकी थी, और अक्षत को जब वॉशरूम के बाहर बैठे हुए 15 मिनट से ज्यादा हो गए तो उसने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था,
लेकिन तारा वहां थी ही नहीं। एक करके जो भी अलग अलग वॉशरूम में लेडीज अंदर गई हुई थीं, सभी बाहर निकल आई थीं, लेकिन तारा अभी तक बाहर नहीं निकली थी। तो अक्षत काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि अचानक से सोनम कहाँ जा सकती है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई है। और जब अक्षत को वहां खड़े खड़े आधा घंटा हो गया, तब उसने खुद ही अंदर जाकर देखने का फैसला लिया था। उसने साथ में एक फीमेल स्टाफ को लिया और खुद अंदर जाकर चेक करने के लिए गया, लेकिन कहीं भी उसे तारा दिखाई नहीं दी थी। अब तो अक्षत के गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। वो गुस्से से होटल स्टाफ पर चिल्लाता हुआ बोला, इस वॉशरूम से निकलने का इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, दिखाओ मुझे। क्योंकि कहीं ना कहीं अक्षत को ये लग रहा था कि जरूर सोनम किसी इमरजेंसी एग्जिट से यहाँ से बाहर निकल गई होगी, ताकि उसे मुझसे सगाई ना करनी पड़े। इसीलिए वो गुस्से से सभी होटल स्टाफ पर दहाड़ रहा था, लेकिन वो स्टाफ काफी ज्यादा कश्मकश का शिकार थे, क्योंकि सोनम के टॉयलेट के बाहर कैमरे लगे हुए थे। उस पर अंदर जाने की तो रिकॉर्डिंग थी, लेकिन बाहर निकलने की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, और कोई वॉशरूम में ऐसा कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था जिसके द्वारा बाहर निकला जा सकता था। अब तो अक्षत के हैरानी और परेशानी के मारे बुरा हाल हो चुका था। वो गुस्से से चिल्लाया, सोनम तुम मुझे इस तरह से धोखा देकर नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो गुस्से से अंगूठी को अपने हाथ में दबोचता हुआ वहां से निकल चुका था। वहीं तारा अक्षत से बचकर सीधा बगीचे में पहुंच चुकी थी, क्योंकि अक्षत के चक्कर में ऑलरेडी उसका काफी सारा वक्त बर्बाद हो चुका था। कहीं ना कहीं तारा को बात समझ में आ चुकी थी कि वाकई जो करिश्मा जी कह रही थी वो ठीक कह रही थी। हल्दी लगी दुल्हन को कभी भी इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए। बेकार में वो अक्षत के हत्थे चढ़ चुकी होती और बहुत बड़ा अपशकुन हो जाता अगर वो समझदारी से काम नहीं लेती। वैसे भी जैसे ही तारा बगीचे में पहुंची, उसने वहां पर दादा महाराज का आवाहन किया था, और दादा महाराज तारा के बुलाने भर से ही उसके सामने प्रकट हो गए थे। क्या हुआ तारा बेटी, इतना परेशान क्यों लग रही हो, और तुम्हारा तो आज मेहंदी का फंक्शन है ना, तो फिर इस तरह से तुम्हारा यहाँ किस लिए आना हुआ। तारा हैरानी से दादा महाराज की ओर देखकर कहने लगी, आपको तो सारी चीजें पता होती है ना दादा महाराज, फिर आपको ये नहीं पता कि आपका पोता यानी आपका बनाया हुआ जिन महाराज कितना ज्यादा बदल चुका है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि उसे काली शक्तियों ने अपना जाल बिछा कर रखा है। इतना ही नहीं, उसे अपने काबू में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे ही तारा ने ये कहा, दादा महाराज हैरानी से बोले, लेकिन तारा बेटी हम तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो हर रोज एक बार पूरे राठौर मेंशन यानी अमन के बंगले का ध्यान करते हैं, हमें तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तभी तारा पूरी तरह से हैरान हो गई थी। आप क्या कह रहे हैं, क्या आपको वाकई अमन में किसी तरह का कोई बदलाव नजर नहीं आया, और क्या आपको ये नहीं लगा कि जरूर उसे किसी काली शक्ति ने कुछ काला जादू किया है। तब दादा महाराज तारा की ओर देखकर कहने लगे, नहीं तारा बेटी, हमें इस तरह का कोई एहसास नहीं हुआ, और हाँ हमें ये भी पता है कि आज तुम्हारा मेहंदी का फंक्शन है, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता चला कि अमन में घर पर किसी काली शक्ति का कोई साया है। अब तारा काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि दादा महाराज जी से उसे किसी तरह की मदद की उम्मीद थी, लेकिन दादा महाराज तो कह रहे थे कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तभी तारा हैरान होते हुए कहने लगी, लेकिन दादा महाराज ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी नजरों से कुछ चीज छुपी रह जाए। तभी दादा महाराज थोड़ी देर को चुप हुए थे, और फिर कुछ सोचते हुए कहने लगे,
क्या तारा परी को दादा महाराज की मदद मिल पाएगी? क्या तारा वक्त रहते अमन के पास पहुंच जाएगी? क्या अमन सोनम को तारा समझकर अपना शिकार बना लेगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।